ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वंदे परमानंदमाधवं श्रीगुरुदीनतारणम्। तो श्रीमद्भागवतम महापुराण नित्यम भागवत सेवया श्री वृंदावन धाम कृष्ण बलराम मंदिर में प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णवजन वैष्णवी माता जी को प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपसे कृपा याचना करते हैं कि श्रीमद्भागवतम इस महापुराण के ऊपर आपका आशीर्वाद लेकर के, शिला प्रभुपाद का आशीर्वाद लेकर के, समत वैष्णव का आशीर्वाद लेकर के कुछ चर्चा कर सकें। तो आइए, आज का जो अध्याय है, स्कंध है 5 और अध्याय चल रहा है 26वां, जो कि इस स्कंध का अंतिम अध्याय है। और आज का जो श्लोक संख्या है वो है 18। तो ये भी श्लोक जो है प्रोज फॉर्म में है, इसको गाया नहीं जा सकता। तो सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। आप हमारे पीछे दोहराइए, यह कोई व्यक्ति जो तू लेकिन यह इस जीवन में वा अथवा असंविभज्य बिना बांटे अश्नाति खाता है यत किंचन जो भी उपनतम श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त अनिर्मितः बिना किए हुए पंच यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ वायस कौवे संस्तुतः समरूप में वर्णित स ऐसा पुरुष परत्र अगले जन्म में कृमि भोजने कृमि भोजन लोक में नरक अधमे अत्यंत निष्कृष्ट नरक में निपतति गिरता है। तत्र वहां शत सहस्त्र योजने 1,00,000 योजन वाले यानी 8,00,000 मील वाले कृमि कुंडे कीड़ों के कुंड में कृमि भूता कीड़ों में से एक बनना स्वयं स्वयं कृमि भी अन्य कीड़ों के द्वारा एव निश्चय ही भक्ष्यमाणः भक्षित होकर कृमि भोजना खाद्य कीड़े यावत जहाँ तक तत् वह कुंड चौड़ा है, अप्रतः अप्रहुतः बिना बांटा और बिना दिया हुआ भोजन, अधा जो खाता है, अनिर्विशेषम जिसने परिशोध नहीं किया, आत्मनम अपने आप को यात्यते पीड़ा पहुंचाता है। तो श्लोक इस प्रकार है, यस्त्व इह वा असंविभाज्य अश्नाति यत किंचन ओपनतम अनिर्मित पंच यज्ञो वायस संस्तुतम स परत्र कृमि भोजने नरक धामे निपतति तत्र शत सहस्त्र योजने कृमि कुंडे कृमि भूता स्वयं कृमि भिर एव भक्ष्यमाणा कृमि भोजनो यावत तत् अप्रता अप्रतुहत आदो निर्विशेष निर्विशेषम आत्मनम यात्यते। तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंच यज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 100,000 योजन यानी 800,000 मील वाले विस्तृत वाला कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरों कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई है? 800,000 मील चौड़ाई है। तो 800,000 वर्षों तक जो है वो इस कुंड में पड़ा रहता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता 3.13 में कहा गया है, यज्ञ शिष्ट अशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल वशे भुजन्ते तो अघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। यज्ञ से बचे भोजन को करने वाले भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। हमें सारा भोजन श्री भगवान से प्राप्त है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान हर एक को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, अतः हमें चाहिए कि उनके अनुग्रह को यज्ञ द्वारा स्वीकार करें। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दरअसल जीवन का एकमात्र उद्देश्य यज्ञ करना है। श्री कृष्ण के अनुसार भगवद गीता 3.9 में यज्ञ अर्थात कर्मणोनत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म से इस भौतिक जगत में मनुष्य बंध जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्दिष्ट कर्म का आचरण करो। इस प्रकार करने से तुम नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त रहोगे। यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं और दूसरों को प्रसाद वितरित नहीं करते हैं तो हमारे जीवन को धिक्कार है। यज्ञ कर लेने तथा आश्रितों को अर्थात बच्चों, ब्राह्मणों तथा वृद्धों को प्रसाद वितरित कर लेने के बाद ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए, किंतु यदि कोई केवल अपने लिए ही या अपने परिवार के लिए रसोई बनाता है तो वह तथा उसे खाने वाले धिक्कारणीय है, मृत्यु के बाद उसे कृमि भोजन नामक नरक में डाल दिया जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेयं श्री गुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् प्रोक्ष श्रीरूपं सागर जातं सह गण रघुनाथितं तं सजीवं सावदैतं सावदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सह गण ललिता शिक्षा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। तिलक प्रपात की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रपात की जय। पंच तत्वात्म कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्षक्तिकम। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतश नमः। वांछा कल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधु भेव च पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारकीय लोकों का वर्णन चल रहा है, तो हम नारकीय लोकों का वर्णन सुन भी रहे हैं और भ्रमण भी हो रहा है नारकीय लोकों का, मानसिक रूप से भ्रमण हो रहा है। इससे पहले हम कौन से नरक लोक में गए थे? अंधकूप। अंधकूप की यात्रा करके अब हम कहाँ जा रहे हैं? कौन से लोक में जा रहे हैं? कृमि भोज। कृमि का मतलब होता है कीड़ा, है ना? तो कृमि भोज नामक नरक है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 800,000 मील, 100,000 योजना, और वो सारा का सारा 800,000 मील, है ना? ये कहने में आता है, लेकिन अगर आप इसको सोचेंगे तो हमारी कल्पना से परे है कि कितना बड़ा कुंड है ये, कितना बड़ा ये लोक है नरक लोक कृमि भोज। तो आज का जो श्लोक है उसमें बताया गया है यस्त्व इह वा असंविभाज्य अश्नाति, यानी असंविभाज्य अश्नाति के जो कोई व्यक्ति बिना बाटे अश्नाति खाता है, क्या? यत किंचन जो भी उपनतम श्री कृष्ण से प्राप्त अनिर्मित बिना किए हुए पंच यज्ञ पांच प्रकार के यज्ञ, तो उसको कैसा बताया गया है? वायस संस्तुता, उसको कौवे के समान बताया गया है। जो व्यक्ति उसको भोजन प्राप्त होता है और वो उसको बगैर बांटे खाता है, तो उसको, या फिर यज्ञ नहीं करता है पंच यज्ञ, यहाँ पंच यज्ञ की स्तुति की गई है, वायस, उसको वायस यानी कौवे के समान के रूप में वर्णित किया गया है। और अगले जन्म में कृमि भोजने नरक धामे निपतति तत्र शत सहस्र योजने, तो अगले जीवन में उसको कहाँ रखा जाता है? कृमि कुंडे कृमि भूता, तो ये कृमि भोज नामक नरक है, इसमें इसको रखा जाता है। तो शिला प्रभुपाद इस श्लोक के ऊपर मुख्य रूप से जो बल दे रहे हैं वो बल दे रहे हैं कि यज्ञ के ऊपर। शिला प्रभुपाद के सारे श्लोक में शिला प्रभुपाद ने तीसरे अध्याय के दो श्लोकों का वर्णन किया है, एक तो 3.13 यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यंते सर्वकल विषय भुजंते तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारणार्थ, कि जो व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए भोजन को करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही भोजन मनाता है वो निश्चित रूप से पाप खाता है। इस श्लोक का मेरे जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। जब मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन गया था दिल्ली राधा पारसार्थी मंदिर, ये बात 2000 की है, तो उससे पहले हमारा जीवन जैसे एक सामान्य भतजीव होता है उसी प्रकार चल रहा था, और हम लोग वही सब कुछ करते थे जो हमने अपने माता पिता से सीखा था, उनको देखते थे, वो जैसे जैसे करते थे वैसे ही हम लोग भी करते थे, और हमारे माता पिता एक सामान्य गृहस्थ थे, उन्हें किसी भगवान के शुद्ध भक्त का साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो उस वजह से हम भी वंचित थे। और हमारे पिताजी भगवद गीता का पाठ किया करते थे, तो हम देखते थे उनको, तो भगवद गीता कौन सी थी उनके पास, वो भगवद गीता बड़ी श्रद्धा के साथ कपड़े में लपेट के रखते थे, वो गीता प्रेस की भगवद गीता थी, तो बाकी दिन तो लगे रहते थे अपने दिनचर्या में, लेकिन इतवार को जरूर पाठ करते थे भगवद गीता का, और ये चीज हम देखते थे कि पिताजी जो है भगवद गीता का पाठ करते हैं। तो जब कुछ सुकृति एकत्र हो गई हमारी न जाने कैसे, तो हम श्री राधा पारसार्थी मंदिर में पहुंच गए, और श्री राधा पारसार्थी मंदिर में जब पहुंचे तो वहां पर भक्त जो है इसी श्लोक को बता रहे थे, चर्चा का विषय था वहाँ, जहाँ गरुड़ जी का स्थान है, अगर आप लोगों ने राधा पारसार्थी मंदिर देखा है दिल्ली का, वहाँ गरुड़ स्तंभ है, और वहाँ पर जो है वो भक्त आपस में बात कर रहे थे, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यंते सर्किल विषय भुजंते तो अघम पापम ये पचाती आत्मकारणा। तो मैं भी खड़ा हो गया वहाँ सुनने लगा, तो कह रहे थे जो कुछ भी आप खाते हो वो पाप खाते हो। तो हमारे को तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई उस समय, हमने कहा ये आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं, हम शाकाहारी हैं, आप कैसे कहते हो कि हम पाप खाते हैं, कहाँ है ये, कहाँ लिखा है। तो वो मेरा पहली विजिट थी, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या बता रहे हैं। तो वहाँ बताया कि देखिए हम अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बता रहे, जो बता रहे हैं भगवान की वाणी बता रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता इसे सब लोग जानते हैं, तो इसका आप श्लोक निकाल के पढ़ लीजिए, 3.13 श्लोक है, आप उसको संतुष्टि कर लीजिए ना। मैंने कहा तो भगवद गीता तो हमारे घर में भी है, तो श्लोक वही होता है जो गीता प्रेस गोरखपुर की भगवद गीता है उसमें भी यही श्लोक होगा 3.13। बोले हाँ जी बिल्कुल यही होगा। तो हमने कहा हमारे पिताजी इतने समय से भगवद गीता पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि ये तुम पाप खा रहे हो, हम तो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं। तो फिर उन्होंने कहा देखो पढ़ना एक अलग बात होती है और उसको समझना एक अलग बात होती है, भगवद गीता को भक्तों के बीच में बैठ करके ही समझा जा सकता है, खुद बांचना तो हर प्रत्येक घर में भगवद गीता होती है, कई लोग पढ़ते भी हैं लेकिन कितना उस पर अमल करते हैं, तो अमल करना जो है एक अलग बात है, उसको बांचना और उसको पाठ करना अलग बात है। तो उस दिन से हमारे मन में जो है क्रांति की लहर दौड़ गई और हमने इसी श्लोक से लेकर के अपना भक्ति में जीवन प्रारंभ किया। तो अब शिला प्रभुपाद ने इन्हीं दो श्लोकों को कोट किया है। एक तो ये यज्ञार्थ कर्मणोच लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुख संगा समाचार, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए अन्यथा कर्म से इस भौतिक जगत में मनुष्य बंध जाता है। तो ये सबसे इस नरक को सबसे निकृष्ट नरक बताया गया है और सबसे जो है बड़ा ये नरक है इस वजह से कि लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। भोजन खाना पाप करना है ये किसी को यकीन नहीं आएगा, केवल भक्तों को छोड़ करके जो कि भक्तों के संपर्क में हैं। सामान्य रूप से किसी को ये बात का विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल है कि यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाना चाहिए। तो अब यज्ञ क्या है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि वास्तव में है क्या ये यज्ञ क्या है और इसको किस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो यज्ञ का सामान्य रूप से अर्थ है हवन करना, तो उसको यज्ञ कहते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, या फिर कुछ परित्याग करना, जस्ट मतलब कुछ सेक्रीफाइस करना, उसको यज्ञ कहते हैं, हवन करने को यज्ञ कहते हैं। लेकिन यज्ञ का जो वास्तविक अर्थ है वो है कि जो भी कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। कोई भी कार्य केवल अग्नि जला करके ही हवन नहीं होता या यज्ञ नहीं होता, कोई भी कार्य अगर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो उसे वास्तविक रूप से यज्ञ कहा जाएगा। और विष्णु सहस्त्र नाम में यज्ञ से संबंधित भगवान के 12 नाम बताए गए हैं, तो मैं आपको बताता हूं। यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप भगवान का एक नाम यज्ञ भी है। और यज्ञपति अर्थात समस्त यज्ञों के स्वामी, यज्वा अर्थात यजमान अथवा स्वयं यज्ञ करने वाले, यज्ञांग भगवान का एक नाम, श्री कृष्ण जिन्होंने वराह अवतार में अपने शरीर के विभिन्न अंगों से यज्ञ की विभिन्न सामग्रियां प्रकट की, इसलिए उनका एक नाम हो गया यज्ञांग। यज्ञ वाहन अर्थात यज्ञों को वहन करने वाले, यज्ञ भृद अर्थात यज्ञों को धारण या यज्ञों की रक्षा करने वाले। तो जब विश्वामित्र आए थे दशरथ महाराज के पास भगवान राम को लेने के लिए और कहा कि मुझे राम दे दो, ये असुरों ने बड़ा आतंक मचा रखा है, यज्ञ नहीं करने देते। तो त्रेता युग में यज्ञ करने से ही भगवत प्राप्ति होती थी, तो विश्वामित्र जो है आए थे, तो भगवान जो है इसलिए भगवान का एक नाम है यज्ञों की रक्षा करने वाले यज्ञ भृद। और यज्ञकृत यज्ञों के रचयिता, और यज्ञी अर्थात समस्त यज्ञ जिसमें समाप्त होते हैं, आकर के भगवान में ही आकर के समस्त यज्ञ समाप्त होते हैं। फिर है यज्ञ भुक अर्थात समस्त यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ साधन अर्थात यज्ञ जिनकी प्राप्ति के साधन हों, यज्ञांत कृत अर्थात यज्ञों का फल देने वाले, और यज्ञ गुह्य अर्थात जो यज्ञों में छिपे हुए हैं। तो ये 12 नाम विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के ये 12 नाम यज्ञों से जुड़े हुए हैं। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञतपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो साधारण रूप से अब ये बताया गया है कि ये यज्ञ करके ही मनुष्य जो है सुखी रह सकता है, और इस बात को भगवान ने भगवद गीता में तीसरे अध्याय में बड़े अच्छे से बताया है, चार पांच श्लोकों में क्या बताया है भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरो वाचा प्रजापति अनेन प्रशस्य ध्वम एष वस्तु इष्ट काम दुख। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कहते हैं समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित सभी मनुष्य तथा देवताओं की संस्कृतियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने यज्ञ की संस्तुति कर दी थी। फिर 3.11 में देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वापस्य अथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। स्थान भोगान इह वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्रदायभ्यो यो भुक्ते स्ते निवसा। तो अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले देवता यज्ञ संपन्न होने पर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। और फिर उसके बाद का श्लोक जो प्रभुपाद ने कोट किया है, यज्ञ शिष्टाशिना 3.13 संतो मुचंते सर किल वजे भोजनते तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारण। तो जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाता है निश्चित रूप से पाप खाता है, और भगवान के भक्त जो है वो यज्ञ में उच्चिष्ट को खाते हैं इसलिए वो सब पापों से बच जाते हैं। इसके बाद में यज्ञ से संबंधित अगला श्लोक है, अन्नाद भवंती भूतानी पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ है वो व्यवहारिक रूप से देवताओं को अर्पित किए जाते हैं, और जिनकी संख्या लाखों में है, 33 कोटि देवी देवता हैं, उनको यज्ञ अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में इसकी संस्तुति की गई है और इसका पूरा एक अलग से खंड है जिसको वैदिक साहित्य में इसको जो है उपासना कांड कहते हैं, देवताओं को जो है प्रसन्न करना यज्ञों के द्वारा, इसको उपासना कांड कहते हैं। तो यज्ञ भी जो है कई प्रकार के होते हैं, यज्ञ सतोगुणी भी होते हैं, यज्ञ रजोगुणी भी होते हैं, यज्ञ तमोगुणी भी होते हैं, और यज्ञ जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी होते हैं जो 3 गुणों से ऊपर है, जिसका प्रभुपाद कहते हैं यज्ञ अर्थार्थ कर्मोरंजित लोको एवं कर्म बंधना। तो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में जो कर्म किया जाता है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो अन्य यज्ञों से भिन्न होते हैं। तो आप देखेंगे कि यज्ञ जो है मेघनाथ ने भी किया था, लेकिन उसका यज्ञ कैसा था, उसने शक्ति का आह्वान किया था भगवान को मारने के लिए, यानी लक्ष्मण पे विजय प्राप्त करने के लिए उसने जो है यज्ञ किया था। तो उसका यज्ञ कैसा था, तमोगुणी यज्ञ था। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, अभी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब मेन जो विषय हमारा है वो ये है कि यज्ञ जो है हमारे लिए करना क्यों आवश्यक है, इस बात को हम सामान्य लोगों तक कैसे पहुंचाएं कि ये यज्ञ करना आपके लिए आवश्यक है, नहीं तो आप घोर पाप खा रहे हो। केवल हम वृंदावन में बैठे हुए भक्तों की बात अलग है, जहाँ सब लोग भक्ति कर रहे हैं और भोग लगा के खा रहे हैं, लेकिन संसार को अगर हम देखेंगे तो कितने लोग भगवान को भोग लगा के खाते हैं, या कितने लोग औरों को दे करके जो है फिर ग्रहण करते हैं। किसी समय में ऐसा प्रचलन था कि लोग अगर भगवान को भोग नहीं भी लगाते थे तो अपनी थाली में से कुछ न कुछ निकाल के बाहर रख देते थे। तो हमने अपने बचपन में भी देखा है, अपने बड़ों को कुछ ना कुछ निकाल के रखते थे, ये गाय के लिए है, ये कुत्ते के लिए है, ये कौवे के लिए है। आज भी जब आप लोग जब श्राद्ध करते हो तो ये सब जो है वो आपसे निकलवाते हैं ब्राह्मण जो पंडित जी हैं। तो कितने लोग आज करते हैं, आज जमाना बदल चुका है, आज इसको जो है एकदम आपको ऑफ डेट बताया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर अपने भोजन में से कुछ निकालता है या बांटने की तो बात अलग रही। तो कितना हम लोग पाप में जीवन जी रहे हैं इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब सवाल यह है कि इसको किस प्रकार से समझा जाए कि ये यज्ञ करना कितना जरूरी है, और इसको किस प्रकार से आसानी से हमारी समझ में बात आ जानी चाहिए। तो इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं। हम लोग जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं हैं, और कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है, संघर्षपूर्ण जीवन है। सुबह से लेकर रात तक लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, तो ऐसे समय में हम कैसे उन तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं। और भगवान ने कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तुम मेरा अंश हो, सनातन हो, लेकिन कठोर परिश्रम कर रहे हो। ये कठोर परिश्रम ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। क्यों कठोर परिश्रम कर रहे हैं? क्योंकि हम को जो करना चाहिए हम उन बातों से दूर हो चुके हैं, हम कृष्ण से अपने संबंध को भुला चुके हैं, हम कृष्ण के आदेशों को, कृष्ण के उपदेशों को भूल चुके हैं। इसलिए व्यक्ति को जो है कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है, नहीं तो कठोर परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले अज्ञान को उत्पन्न करते हैं, और अज्ञान को उत्पन्न करते ही ये संसार चलता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ता मृत्युमते मन्यते। अपने आप को कर्ता मान करके हम संसार में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। और जब हम इस संसार में आते हैं और हम कठोर परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे को अनगणित लाभ भी प्राप्त होते हैं। कैसे लाभ प्राप्त होते हैं? देवताओं के दिए गए वरदान हमको प्राप्त होते हैं, जिसको कदाचित हम गंभीरता से नहीं लेते। जैसे जीव जब 9 महीने का कारावास भोग करके आता है, एक अंधेरी कोठरी में से निकल के जब उसका जन्म होता है तो उसको क्या मिलता है? उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है। सूर्य का प्रकाश से उसका जीवन जो है प्रारंभ होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है जो उसको प्राप्त हो रहा है, ये क्या है? ये देवताओं के वरदान है। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश हो गया, या फिर चंद्रमा की रोशनी हो गई, वायु हो गया, जल हो गया, अन्न हो गया, या फिर जो हमारा शरीर भी हमको प्राप्त होता है, ये भी देवताओं की या देव कृपा से प्राप्त होता है, है ना। अगर हमारे को स्वस्थ शरीर प्राप्त है तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये शरीर हमको ऐसे ही प्राप्त हो गया। अगर शरीर में कुछ भी विघ्न है, कुछ भी रोग है, तो बचपन से भी रोग हो जाते हैं, तो समझना चाहिए कि देवता जो हैं असंतुष्ट हैं। ये शरीर का निरोगी शरीर का प्राप्त होना भी ये देवताओं की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, वरदान है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे को ये लाभ मिल रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी, वायु और अन्न और हमारा ये शरीर, तो ये इसको बताया गया है कि अगर इसको हम इनको कुछ ना कुछ अर्पित नहीं करते देवताओं को तो क्या है। फिर बताया गया भगवान कहते हैं कि तुम चोर हो, स इस्ते नहीं बस, चोर हो तुम। जैसे इस संसार में जब हमको कुछ प्राप्त होता है उसके लिए हमको टैक्स भरना होता है, हमको बिजली हम खर्च करते हैं, बिजली का बिल भरना होता है, पानी भी आज बोतल खरीद के पीना पड़ता है, सबके लिए तो हमको पैसा देना पड़ता है। लेकिन जो देवताओं के द्वारा हमको प्राप्त है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हमारे को बताया गया है कि हम चोर हैं, हम उसके लिए कुछ अर्पित नहीं करते, यानी यज्ञ नहीं करते। तो यज्ञ किए बगैर भगवान ने कहा है कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। जैसे कोई चोर सुखी नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी चोरी करता रहे लेकिन वो सुखी तो नहीं, सुखी जीवन तो नहीं बिता सकता। इसी प्रकार से हम लोग भी सुखी जीवन नहीं बिता सकते जब तक यज्ञ ना करें। तो देवताओं के अलावा भी हमारे को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, तो ये हम ऋण हो जाते हैं, हम देवताओं के ऋणी हो जाते हैं। इस प्रकार देवताओं के अलावा भी हमारे ऊपर कई प्रकार के ऋण होते हैं। कौन कौन से ऋण होते हैं, जैसे हमें गाय से दूध प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के हम उसके व्यंजन भी बना के खाते हैं, तो गाय हमारे को दूध देती है तो हम गाय के भी ऋणी हैं। हमारे गाय को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, उससे भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं के हम ऋणी हो गए, हम गायों के पशुओं के ऋणी हो गए, बैल भी हमारे लिए अन्न जो है वो जोतता है, और अनेक प्रकार से कई प्रकार के हमको मालूम नहीं कि किस प्रकार से पशु ऋण भी होता है। और हमारे परिवारजनों के भी हमारे ऊपर ऋण होते हैं, परिवारजन जिन्होंने हमारे को इस संसार में हमारे को पाला पोसा बड़ा किया, उसके भी हम प्रति हम ऋणी होते हैं। और मित्र संबंधियों के प्रति भी ऋणी होते हैं, और गुरुजनों के जिनसे हमने शिक्षा ली उनके प्रति भी हमारे ऋणी होते हैं, और समाज के भी ऋणी होते हैं, और पूर्वजों के भी ऋणी होते हैं जिनसे हमारे को बहुत कुछ प्राप्त होता है पूर्वजों से। तो ये सब ऋण चुकाने के लिए हमें इन सबको प्रसन्न करना होगा। अगर हम प्रसन्न नहीं करते हैं तो ये हमसे असंतुष्ट रहेंगे, और इस प्रकार हम कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इन सब ऋणों से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान ने कहा है यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो अगर आप यज्ञ नहीं करोगे तो आप क्या होगा, इस संसार में आप कर्म बंधन में फंस जाओगे, आपको बांध लेगा ये संसार, ये छोड़ेगा नहीं संसार आपको। तो यज्ञ करना होगा। तो अब यज्ञ करने के लिए जो है हमारे को क्या करना चाहिए, तो वास्तव में जैसे बताया गया है कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। तो जो कलो जो ये चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसमें केवल हरि का कीर्तन करने से हमारा यज्ञ हो जाता है। जब तक हम इस बात को, इस जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे कि हमें ये करना ही है और इसको करने से ही हमारा कल्याण होगा। तो बताया गया है जैसे भागवत में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पांगस्त पाषदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसा। तो इस कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है किंतु उसका वर्ण श्यामल नहीं है, वे अपने संगियों सेवकों आयुधों और विश्वासपात्र साथियों की संगत में रहता है। तो मतलब यह है कि जो नाम संकीर्तन यज्ञ है, कितनी बड़ी सुविधा हमको दी गई है, कितनी बड़ी सुविधा हमको दी गई है कि इस यज्ञ करने से हम नरकीय लोकों में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। हरि बोल, कितनी बड़ी सुविधा है, केवल जिह्वा से भगवान का नाम लेने से यज्ञ हो रहा है। तो हमें समझना है कि किसका यज्ञ करना है हमारे को। कृष्ण और बलराम जब वन में गए हुए थे तो एक दिन उनको ग्वालों को, उनके जो सखा थे उनको सबको भूख लगाई और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप तो असुरों का वध करते हैं, एक असुर हमारे पेट में छलांगे मार रहा है, हमें भूख लग रही है, हमारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, पास ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और जाकर के उनसे कहो कि कुछ भोजन की व्यवस्था करें, पर सुनो, अब मेरा नाम मत लेना उनसे, क्योंकि मैं वैश्य हूं। भगवान जो है नंद बाबा के पुत्र के रूप में जाने जाते थे और नंद बाबा वैश्य थे, तो वैश्यों को बोले दान जल्दी से देते नहीं हैं, ब्राह्मणों को ही दान जल्दी से मिलता है, तो मैं तो वैश्य हूं, मेरा नाम मत लेना, चलो तुम ऐसा करना बलराम का नाम ले लेना। बलराम फिर भी क्षत्रिय है, वैश्य नहीं है, वासुदेव के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, तो आप बलराम का नाम ले लेना। तो कहना कि ऐसे ऐसे मंगाया है, तो गए और उन्होंने जाकर के सारी बात कही ब्राह्मणों से कि भई ऐसे ऐसे हमें कुछ भोजन चाहिए, भूख लगी है। तो उन्होंने बात को सुना सुना कर दिया। वो क्या कर रहे थे? वो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कैसा यज्ञ कर रहे थे? वो यज्ञ कर रहे थे, वो स्मार्त ब्राह्मण थे, वैष्णव ब्राह्मण नहीं थे। वो कृष्ण बलराम से उनका संबंध नहीं था, भगवान को वो इस रूप में नहीं जानते थे, वो स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने साक्षात कृष्ण और बलराम को अनदेखा कर दिया और उनकी बात को नहीं सुना, और जो भोजन उनको देना चाहिए था, सहर्ष देना चाहिए था, उन्होंने उनको नहीं दिया। तो वापस गए वो लोग भगवान के पास कि भाई उन्होंने तो हमको लौटा दिया है। तो भगवान ने फिर मुस्कराए, भगवान ने कहा, अच्छा अब तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ, वो मेरी भक्त हैं। तो जब वो उनकी पत्नियों के पास पहुँचे, है ना, कृष्ण और बलराम का संदेश लेकर के, तो उनकी पत्नियों ने क्या किया, उनकी पत्नियाँ काफ़ी समय से चिंतन कर रही थी कृष्ण और बलराम का कि कब हमको कृष्ण और बलराम के दर्शन होंगे, कब हमको दर्शन होंगे। और वो व्यवस्था ठाकुर जी बनाते हैं हमारे भावों को देख करके। तो फिर उन्होंने सारे जितने भी उनके पास यज्ञ से अर्पित या जो भी सामग्री थी, भोजन था, वो स्वयं लेके चल पड़े भगवान के पास, और भगवान कृष्ण बलराम के उन्होंने साक्षात दर्शन किए। साक्षात दर्शन करने के बाद वो संतुष्ट हुई पूर्ण रूप से, उन्होंने भगवान का आलिंगन किया, भगवान के चरणों में उन्होंने जो है नतमस्तक किया, पूर्ण रूप से उनको जो है वो क्षण उनको प्राप्त हुए जो कभी बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान के साक्षात दर्शन करने के। और उस प्रकार उन्होंने जब अपना सब कुछ वहाँ उनको भगवान को अर्पित किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि वास्तव में तुमने वो कार्य किया है जो जीव को करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माँ के माँ में कम शरण व्रज, हम तो आम सर्व पापे में, तो तुम मेरे पास आए हो। तो भगवान बड़े संतुष्ट हो गए। तो अब उन्होंने कहा कि अब आप घर जाओ। तो ब्राह्मण की पत्नियां बोली कि ये आप कैसी बात कर रहे हो कृष्ण, हम तो उनको छोड़ के आ गए हैं ना, कभी भी हमने कभी आपसे मिलने का प्रयास किया तो हमको आने नहीं देते थे, लेकिन आज हमने उनकी एक नहीं सुनी और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके हम आपके पास आ गए हैं। अब आज्ञा का उल्लंघन करके आ गए हैं पतियों की और अपने परिवारजनों की, तो अब तो वो हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हम कैसे वापस जाएं, आप हमें अपने शरण में ले लो। तो भगवान मुस्कराए, बोले नहीं, अभी आपके पतियों पे आप घर में वापस लौटो, उनके बगैर वो गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा, तो आप जाओ और जा करके आपके पति अब आज के बाद आपसे अधिक प्रेम करेंगे और आपके परिवारजन आपसे सब अधिक प्रेम करेंगे, आप जा करके देखना। इस तरीके से कृष्ण ने उनको सांत्वना दे करके और भेजा। और वास्तव में जब कृष्ण को हम संतुष्ट करते हैं तो सारा संसार संतुष्ट हो जाता है, सारा संसार संतुष्ट हो जाता है। अन्यथा आप किसी को भी संतुष्ट करने का कितना भी प्रयास कर लें, न तो आप किसी को संतुष्ट कर पाएंगे और ना ही कोई आपसे संतुष्ट हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए बताया गया है कि हमारे को करना क्या है, हमारे को केवल भगवान का कीर्तन, जो नाम संकीर्तन यज्ञ है, उसको करके ही हम संतुष्ट कर सकते हैं सभी को। जिस तरीके से जड़ में पानी देने से तरोर मूल निश्चनेना, तो सारी पत्तियां टहनियां जो हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो आज समय तो हो रहा है, लेकिन मैं अभी दो चार मिनट आपके लूँगा। और तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमको संकीर्तन करना है। और शिला हरिदास ठाकुर ने भी क्या कराया था, एक वैश्या को इंद्रिय तृप्ति के बहाने यज्ञार्थ यज्ञ के कर्म में लगाया, उसको भजन जप करवाया हरिदास ठाकुर ने। तो भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप योग्य अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। और हरिदास ठाकुर ने उसको अपने बहाने बिठा करके और नाम का जप कराते 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 उसके सारे पापों से उसको मुक्त कर दिया और वो हरि नाम के जप में लग गई। तो इस तरीके से नाम का जप करना भी यज्ञ है और प्रसाद को ग्रहण करना भी यज्ञ है। अगर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं इस भावना से कि हम भगवान के भोग लगे हुए प्रसाद को खा रहे हैं, उच्चिष्ट खा रहे हैं, तो वो भी यज्ञ है। अपने पत्नी और बच्चों का पालन करना भी यज्ञार्थ कर्म बन सकता है, ये भी यज्ञ कर्म बन सकता है। शिला प्रभुपाद कहते हैं 13वें अध्याय के 8 और 12वें श्लोक के उसमें कि भाई अगर चार कार्य हम घर में करते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका घर ही क्या है, वो यज्ञशाला है, आप वहाँ रह सकते हो। क्या क्या, एक तो घर में हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए और कृष्ण अर्पित भोग खाना चाहिए, दो, और तीसरा भागवत गीता और भागवत कथा का पाठ होता रहे और अर्च विग्रह की पूजा होती रहे। ये चार कार्य करके ये भी सब यज्ञ है। तो इस तरीके से परिवार में रहना, परिवार का पालन करना, यह भी यज्ञार्थ कर्म है। और इस विषय में एक कथा आती है श्रीवास पंडित जी की। तो श्रीवास आंगन में भगवान महाप्रभु प्रतिदिन प्रति है ना रात को जो है कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे। तो एक बार महाप्रभु एकांत में श्रीवास पंडित के पास बैठे और उससे कहने लगे, श्रीवास ये तुम प्रतिदिन कीर्तन करते रहते हो लेकिन कुछ कारो कुछ व्यवसाय या कुछ धन उपार्जन का कोई कार्य नहीं करते, तो तुम गृहस्थ आश्रम में हो, तुम इतना बड़ा तुम्हारा परिवार है, श्रीवास पंडित का बहुत बड़ा परिवार था, तो ये तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा। ठीक है यज्ञ कीर्तन संकीर्तन कर रहे हो लेकिन कुछ अपने बारे में सोचो, कैसे चलेगा तुम्हारा गृहस्थ जीवन। तो श्रीवास ने कहा, महाप्रभु मेरे को कहीं अब अच्छा नहीं लगता कुछ ज्यादा प्रयास करना या ये धन उपार्जन करना। तो बोले तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी। बोले जो मेरे प्रारब्ध में होगा वो मुझको प्राप्त हो जाएगा, मेरे को आप जो है इस बारे में मेरे से बात मत करो। तो महाप्रभु ने कहा कि देखो अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती तो तुम संन्यास ले लो, छोड़ दो घर बार। तो श्रीवास पंडित ने कहा, नहीं मैं संन्यास भी नहीं लूँगा, मैं घर गृहस्थी में रहूँगा और मैं कहीं जाऊँगा भी नहीं कुछ प्रयास करने। तो महाप्रभु कहते हैं कि देखो तुम्हारे घर पे आकर के कोई तुम्हें देके जाएगा क्या। अभी कभी हम जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए तो 10 घरों में जाते हैं तो 5 घरों में तो मना कर देते हैं जाने पर भी। तो तुम क्या सोचते हो तुम्हें घर में आकर के कोई दे जाएगा, ये कैसी बात करते हो श्रीवास। तो उसने कहा श्रीवास ने, महाप्रभु ठीक है 3 दिन तक अगर मेरे को भोजन नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, तो 3 दिन के बाद मैं अपने गले में पत्थर बांध करके गंगा जी में कूद जाऊंगा। तब महाप्रभु ने हुंकार भर दी, शिवास ये तुम कैसी बात करते हो, तुमने भगवत गीता में मेरे श्लोक को नहीं सुना, अन्यास चिंतियंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभिक्तानाम योगक्षेमम वहामी हम। तो जो मेरा नित्य भजन में लगा रहता है उसकी जो आवश्यकताएं हैं और जो कुछ उसके पास है उसको मैं पूरा करता हूं, मैं वहन करता हूं। कदाचित ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जी को कटोरा मांग करके भीख मांगनी पड़ जाए, लेकिन श्रीवास तुम्हारे घर में कभी भी अभाव नहीं हो सकता। ये भगवान के वचन है। तो जो भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाता है और पूर्ण रूप से सरेंडर कर देता है, तो कृष्ण जो है व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन को चलाते हैं, स्वयं वहन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ को हमें स्वीकार करना है नाम संकीर्तन के रूप में और प्रसाद के रूप में। प्रसाद पाकर के हमको अपना इस जीवन को चलाना है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो, टीका टिप्पणी हो तो कर सकते हैं। जब भगवान को आपने भोग अर्पित कर दिया तो भगवान को भोग अर्पित हो जाने के बाद वो जो है उच्चिष्ट जो है वो प्रसाद बन जाता है, वो आप पा सकते हैं, है ना। लेकिन सेवा के रूप में गौ सेवा करते रहना चाहिए। और किसी के ऊपर जो ये कर्म कांड है, कुत्ते को खिलाना, कौवे को खिलाना, है तो गौ सेवा तो करनी चाहिए। गौ सेवा तो निश्चित रूप से करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि गौ सेवा क्यों करनी चाहिए? गौ सेवा करने से हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? गौएं प्रिय है ना। इस संसार में अगर आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं और उसके पास कुत्ता है, तो आप उस कुत्ते से फ्रेंडशिप कर लो तो उसके मालिक से आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। हाँ, वो कर सकते हैं आप। मतलब कहने का ये है कि भगवान को भोग लगा करके ही हमें प्रसाद पाना है, और गाय को तो आप कैसे भी खिलाओ, भोग लगा के खिलाओ और बगैर भोग लगाए खिलाओ, गाय जो है कर्म बंधन में नहीं है ना। गाय को भोग लगा के खिलाने की आवश्यकता नहीं है। गाय कर्म, मनुष्य कर्म बंधन में है, गाय तो कर्म बंधन में नहीं है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की शिला प्रभुपाद की तई गौर प्रेमानंदी।